الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں اس کلاس کے اندر، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور اس میں ہم 66 پیج نمبر کے اوپر ہیں. ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے ان آیات کا، آیت نمبر 36 سے لے کر کے 42 تک کا جو گروپ ہے اس کا ترجمہ چل رہا ہے. تو پچھلی کلاس میں ہم نے جہاں تک پڑھ لیا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں. تو یا صاحب السجنی، یہاں سے تو فرمایا کہ، اچھا یہ خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. تو فرمایا کہ اے قید خانے کے رفیقوں، یعنی اے میرے رفیقوں، یعنی کہ جن کے ساتھ میں نے دوستی بنائی ہوئی ہے، جن کے ساتھ میں ہمیشہ اٹھتا بیٹھتا تھا، بلکہ صرف جو قید خانے کے اندر میرے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تو میرا اختیار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو حکومت نے قید خانے میں ڈال دیا، تو اس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو نیک لوگوں کی صحبت ہی اختیار میں ہمیشہ کرتا، ٹھیک ہے. تو اسپیسیفائی کر دیا کہ اے قید خانے کے رفیقوں، ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں تفسیراً بریکٹس کے اندر کہ ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ عبادت کے واسطے متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے. تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے. یعنی یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت بھی تھوڑی ہے ان بتوں کی، تم نے تو بس نام یعنی خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ کوئی نام دے دیے، لات منات عزہ، جیسے کہ مشرکین مکہ نے دے دیے تھے. تو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے، خدا تعالی نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں تھی. ٹھیک ہے، دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک عقلی دلیل جو کہ انسان کے عقل کو لگے، عقل کو سمجھ میں آئے، اس کے انٹلیکچولی وہ کنونسڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف کوئی عقلی دلیل بھی یعنی ٹھہر نہ پائے، ٹھیک ہے. ورنہ تو ایک بندہ اپنی عقل سے کوئی دلیل دیتا ہے، دوسرا بندہ اپنی عقل سے اس کی دلیل کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو وہ تو پھر دلیل کہلانے کے قابل نہ ہوئی نا، جس کو کہ آسانی کے ساتھ توڑ دیا جائے کاؤنٹر دلیل کے ذریعے سے. تو عقلی دلیل تو وہی ہوگی جو کہ سٹینڈ یعنی کھڑی رہ سکے مخالفین کے سامنے. اور دوسری دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل. نقلی کا مطلب فیک والا نقلی نہیں، بلکہ وہ دلیل جو کہ کہیں سے آپ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، یعنی کسی بڑی اتھارٹی سے، کسی زیادہ عقلی اتھارٹی یا کسی زیادہ علمی اتھارٹی سے آپ جو ہے وہ نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی فلانے نے کہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، اس وجہ سے ان کی بتائی ہوئی دلیل جو ہے وہ صحیح ہوگی. ایسی دلیل کو نقلی دلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نیریٹڈ یا یعنی کاپیڈ فرام سم ادر سورس. تو ان کے تو معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں، اور حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر ہم آج کی کلاس کے اندر معارف و مسائل میں یہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی حکم تو خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو. یہی توحید اور عبادت صرف حق تعالی کے لیے यानी सिर्फ हक ताला के लिए मखसूस करना, तौहीद सिर्फ हक ताला के लिए और इबादत भी सिर्फ हक ताला के लिए मखसूस करना, यही सीधा तरीका है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ईमान की दावत और तबलीग के बाद अब उनके ख्वाब की ताबीर बताते हैं। ठीक है, पहले ईमान की दावत दे दी उन दोनों साहिबी या सिजन को, उसके बाद फिर जो है ना वो असल जो जो मकसद था जिसकी वजह से उन लोगों ने यूसुफ अलैहि सलाम को एंगेज किया था, अब उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले तमहीद बांधना ये जायज़ है, और कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि बात कुछ की जा रही है, लेकिन पहले जो है ना वो आप जो है वो माइंड बना लें, आप जो है वो कोई अपनी बेस बना लें, असल बात करने से पहले बेस बना लें अपनी। ठीक है ना, तो बेस जो होती है वो ऐसा लगेगा कभी कि वो तो असल बात से मुताल्लिक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल आपने अपनी तरफ से एक नई बात कर दी है, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है ये उन्होंने तो ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो दावत तबलीग का काम शुरू कर दिया, तो इररेलीवेंट बात लगती है। लेकिन इररेलीवेंट बात जो है ना वो कभी, यानी देखने वाले को लगे बेशक, लेकिन आप अगर उसको रेलिवेंट समझते हैं तो यू शुड डू इट। ठीक है, आपने किसी मकसद से वो बात करी ना, बिला मकसद तो आप ये बात नहीं कर रहे हैं। तो फरमाया कि अब उनके ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि ऐ कैद खाने के रफीकों, तुम में एक तो जुर्म से बरी होकर अपने आका को बदस्तूर शराब पिलाया करेगा। बदस्तूर का मतलब ही विल कंटिन्यू टू क्या कहते हैं उसको, शराब पिलाना जो भी होता है उसको, तो इसको अंग्रेजी में जो भी कहते हैं। तो यानी इसमें एक और भी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना फिर उनको उनके लकब से खिताब फरमाया है, या साहिब ये सिजनी, एक बार फिर फरमा रहे हैं। ठीक है, तो किसी मुखातब को ना अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसका नाम ले लेना, या उसका जो भी लकब है, या उसका जो भी आपने एक किरदार बनाया हुआ है उसका, तो ऐसे उसको एड्रेस करना ये मुफीद होता है। ठीक है ना, तो बीच बीच में एड्रेस करते रहना नाम से, ये एक अच्छी बात करने का तरीका है। ठीक है, तो ये जो है वो हमें स्पीकिंग यानी व्हेन टू डू, यानी व्हेन यू हैव टू डू दावत, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो क्या असलूब ज्यादा मुफीद होते हैं, ये हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज से पता चल रहा है। ठीक है, तो या साहिब या सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, कि एज फॉर वन ऑफ यू, कि तुम में से एक तो अपने आका को बदस्तूर शराब पिलाया करेगा, और दूसरा मुजरिम करार पाकर सूली दिया जाएगा, और उसके सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे, और जिस बारे में तुम पूछते थे वो इसी तरह मुकद्दर हो चुका है। ठीक है, ये जो फरमाया ना कि قضي الامر الذي فيه تستفتيان, जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते थे ना वो इट हैज बिन डिसाइडेड, वो हो चुका है मुकद्दर। चुनाचे मुकदमे की तनकीह के बाद इसी तरह हुआ कि यानी जब वो उसकी जो 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 कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था इन दोनों के खिलाफ, तो जब सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हो गई तो इसी तरह हुआ कि एक बरी साबित हुआ, एक को जो है वो बरी कर दिया गया, और दूसरा मुजरिम, दोनों जेलखाने से बुलाए गए, एक रिहाई के लिए और दूसरा सजा के लिए। ठीक है ना, दोनों को रिहाई मिल गई, लेकिन रिहाई मिलने के बाद दोनों के साथ मुख्तलिफ मामला हुआ, एक को जो है वो दुनिया से ही रिहाई मिल गई, दुनिया से भी रिहाई मिल गई, और दूसरे को जो है वो सिर्फ कैद खाने से, दुनिया के एक लिमिटेड कैद खाने से रिहाई मिली। तो फरमाते हैं कि और जब वो लोग जेल खाने से जाने लगे तो जिस शख्स पर रिहाई का गुमान था उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी तज़किरा करना कि एक शख्स बेकसूर कैद में है, तो उसने वादा कर लिया कि ठीक है मैं बाहर निकलूंगा तो आपका तज़किरा करूंगा। और वो उसका आका कौन था, वक्त का बादशाह था, तो बादशाह के सामने तज़किरा करने से जो है ना फिर उसको इनको छुटकारा मिल सकता था। फिर उसको अपने आका से यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना शैतान ने भुला दिया। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे क्या फरमाया, फअंसाहु शैतानु, शैतान ने उसको भुला दिया, तो इस वजह से कैदखाने में और भी चंद साल उनका रहना हुआ। ठीक है, अब शैतान ने भुला दिया का अल्लाह ताला जो है यहाँ पर खास लफ्ज शैतान बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, वरना इसके बगैर भी काम चल सकता था। ठीक है ना, फनसिया है ना, वो भूल गया, ये भी अरबी जबान के अंदर बात पूरी हो जाती। लेकिन शैतान का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो अपने कुरान मजीद के अंदर बार 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 तस्करा करते हैं, हत्ता के आखिरी सूरत तक जो है वो उस शैतान का तस्करा करते हैं। ठीक है, तो नास मन के नास लाइन नास मुशर्रल वसवासल खन्नास, खन्नास जो है ये भी शैतान की ही एक एक किस्म है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि मेरे बंदे जो है ना, वो अपने दुश्मन को कभी भी ना भूलें, अपने दुश्मन को कभी भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने दोस्तों का निज़ाम तो बनाया ही है, अल्लाह ताला खुद सबसे बड़े दोस्त हैं, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, ठीक है ना, सब खुद सबसे बड़े दोस्त हैं, और उनके अलावा अल्लाह ताला ने रसूलों का निज़ाम बनाया, मशायख का, उलमा का, नेक लोगों का, सालिहीन का, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने दुश्मनों का भी निज़ाम बना दिया। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उसी दिन जो है वो एक दुश्मन का भी सिस्टम क्रिएट हो गया, अगरचे कि वो दुश्मन पहले से क्रिएटेड था। इब्लीस तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले से क्रिएटेड था ना, लेकिन उस वक्त वो इब्लीस बना नहीं था, वो अजाजील था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और अजाजील का इब्लीस में कन्वर्ट होना, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां से फिर जो है ना, वो दुश्मन का निज़ाम भी आ गया, और फिर ये दुनिया की जिंदगी जो है वो खालिसतन यही है कि दोस्त से दोस्ती बनाओ और दुश्मन से अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। तो भाई दुश्मन याद रहेगा तो हिफाजत का इंतजाम करेगा, अगर दुश्मन ही भूल जाएगा, यानी दुश्मन को ही भूल जाएगा, तो फिर कहेगा कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है, तो गाफिल हो जाएगा, और फिर दुश्मन जो है ना, उसके साथ कोई बड़ा हैंड कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे परवरदिगार हमें दुश्मन की बार बार याद दिलाता रहता है। अच्छा, मारिफ व मसाइल हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इन आयात के तहत लिखे, तो फरमाते हैं कि मस्कूरा आयात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का एक ज़ेली वाकया मस्कूर है, यानी एक सब स्टोरी। वैसे तो पूरा का पूरा यानी सूरत है ही एक वाकये के ऊपर मबनी, ठीक है, लेकिन उनमें भी छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स, ठीक है ना, पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो है ना, वो ये कोई बायोग्राफी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, या ऑटोबायोग्राफी, या कि एक एक चीज जो है ना, वो अब ये हुआ, अब उसके बाद ये हुआ, बल्कि उसके अंदर सीधा सीधा वाकये अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। तो अब उनमें से एक वाकया ये सिजन वाला वाकया, ये बात आप बारहा मालूम कर चुके हैं कि कुरान करीम, कुरान हकीम ना कोई तारीखी किताब है, ना किस्सा कहानी की। इसमें जो तारीखी वाकया या किस्सा जिक्र किया जाता है, इससे मकसूद सिर्फ इंसान को इबरत व मौइज़त और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतअल्लिक अहम हिदायात होती हैं। यानी वाकया बराए वाकया, किस्सा बराए किस्सा नहीं, बल्कि किस्सा व वाकया बराए इबरत और हिदायत, क्योंकि ये किताब हिदायत है। पूरे कुरान और बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात में सिर्फ एक ही किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा है कि जिसको कुरान ने मुसलसल बयान किया है, वरना यानी कंटिन्यूसली लंबा यानी बयान किया है शुरू से लेकर के आखिर तक, वरना हर मकाम के मुनासिब तारीखी वाकये का कोई जरूरी जुज जिक्र करने पर इक्तफा किया गया है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे अंबिया के भी वाकयात बयान किए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के भी बहुत सारे वाकयात का जिक्र है कुरान मजीद के अंदर, लेकिन बस कोई जुज का बस जिक्र है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अव्वल से आखिर तक देखिए, तो इसमें सैकड़ों इबरत व मौइज़त के मौके और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के लिए अहम हिदायतें हैं। ये ज़ेली किस्सा भी बहुत सी हिदायात अपने दामन में लिए हुए है। ठीक है, इबरत के लिए तो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए वाकये और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर और सुनने वाले के ऊपर कि आया वो भी अपनी निगाह इबरत को इस्तेमाल करता है, या इबरत की निगाह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बस जो है वो ऐसे ही सुन करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इबरत की निगाह क्या चीज होती है, इबरत की निगाह क्या चीज होती है, इबरत की निगाह का मतलब ये होता है कि उस मामले की तह तक पहुंच जाना, और उसमें जो जो यानी असबाक हैं, इसके जाती जिंदगी के लिए क्या रेलेवेंट है या इज्तिमाई जिंदगी के लिए क्या बातें रेलेवेंट हैं, उन उनको जांच लेना, उनको मालूम कर लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर इबादत की निगाह है, और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने जो है वो यानी बस आपके आपके कुछ जो है वो नॉलेज में इजाफा हो गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हिस्टोरिकल नॉलेज में आपके इजाफा हो गया, तो इसको इबरत की निगाह नहीं कहेंगे। इबरत की निगाह मिलेगी कैसे? इबरत की निगाह मिलेगी कैसे? ये अल्लाह ताला की एक देन होती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, इस देन को अल्लाह ताला से मांगना भी चाहिए, दुआ में मांगनी चाहिए कि अल्लाह आप मुझे इबरत की निगाह अता फरमा दें, ठीक है ना। और अब ये जो दुआ अल्लाह ताला से मांग ली है, तो इस दुआ को कबूल करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? कबूल करवाने के लिए उसके लिए जो है ना, वो अपने दिल की एक तड़प भी अल्लाह ताला को दिखानी होती है कि अल्लाह आई एम ओपन टू नॉलेज विद द नीयत ऑफ अमल। मैं इल्म जो है ना, वो इल्म बराए इल्म की नीयत से हासिल नहीं कर रहा कि बस मेरे पास डिग्रियां आ जाएं, मेरे पास इसनाद आ जाएं और मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो है वो अंबार लग जाए। नहीं, मेरी नीयत ये नहीं है इल्म हासिल करने की, बल्कि मैं इल्म जो है वो अपनी इस्लाह के लिए हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानते हैं ना, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को भी जानते हैं, हमारी सोचों को भी जानते हैं। तो जिसकी ये सोच होगी ना कि वो इस्लाह की खातिर इल्म हासिल करना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको इबरत की निगाह अता फरमाएंगे, क्योंकि इबरत की नजर के बगैर इस्लाही इल्म हासिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी है कि एक इंसान की, बिकॉज इबरत की निगाह का मकसद क्या है? इस्लाह करना, ठीक है ना, अपनी जहालत दूर करना, ये भी एक लेवल ऑफ इस्लाह है, लेकिन अपनी गलतियां दूर करना ये असल मकसूद है इसके अंदर। तो वाकया ये हुआ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत और पाकी बिल्कुल वाजे हो जाने के बावजूद अजीज मिस्र और उसकी बीवी ने बदनामी का चर्चा खत्म करने के लिए कुछ अरसे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज देने का फैसला कर लिया, जो दर हकीकत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ और ख्वाहिश की तकमील थी, क्योंकि अजीज मिस्र के घर में रहकर इस्मत बचाना एक सख्त मुश्किल मामला हो गया था। अपनी इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, वो अपने ऊपर बहुत, यानी जिसको कहते हैं ना खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको आज के दौर के अंदर बहुत ही बड़ा बड़ी वर्च्यू बना करके पेश किया जाता है कि भाई ये तो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर तो बड़ी खुद एतमादी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम में इस तरह की खुद एतमादी नहीं थी, जिस तरह की खुद एतमादी को आज के दौर में बहुत हाईलाइट किया जाता है और बहुत बड़ा समझा जाता है, ठीक है। खुद एतमादी कि जो ये शक्ल है ना, जो कि इस कल्चर के अंदर, आज के कल्चर के अंदर, जिसको कि अच्छी अच्छी वस्फ के तौर पर पेश किया जाता है, ये असल में अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन खुद एतमादी का एक जुज है जो कि अच्छी चीज है, वो क्या है? खुद एतमादी का एक जुज जो है वो अच्छी चीज है, वो क्या है कि जब इंसान को अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक मिल जाए, ठीक है, जब इंसान को जो है वो ईमान की दौलत मिल जाए, तो उसके ऊपर उसको एतमाद हो कि हाँ मैं सही रास्ते के ऊपर हूं, ठीक है ना। मैं सही रास्ते के ऊपर हूं क्या मतलब? कि मैं जिन मशाइख के रास्ते की इत्तबा कर रहा हूं, मैं जिन बड़ों के रास्ते की इत्तबा कर रहा हूं ना, वो सही रास्ता है, ठीक है। तो ये खुद एतमादी की एक एक शक्ल है जो कि एक्चुअली अपने बड़ों के ऊपर एतमाद की तरह से मैनिफेस्ट होता है, जाहिर होता है, ठीक है ना। वो भी अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है एज सच, कि ये एतमाद नहीं होता कि मैं हमेशा इस रास्ते के ऊपर हूंगा, लेकिन ये एतमाद जरूरी है कि मैं अभी सही रास्ते के ऊपर हूं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान है, ठीक है, अब उसके लिए ये लाजमी है कि वो इस्लाम के ऊपर एतमाद रखता हो, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद रखता हो, अपने बड़ों के ऊपर एतमाद रखता हो, अगर वो ये सोचता रहेगा कि पता नहीं ये मेरा जो दीन है, जिस रिलीजन के ऊपर मैं हूं, ये पता नहीं सही है कि नहीं है, राइट? पता नहीं सही है कि नहीं है। हो सकता है क्रिश्चियनिटी सही हो सकता है हिंदुइज्म सही हो सकता है जुडाइज्म सही हो सकता है बुद्ध मत सही हो, तो ऐसे शख्स का क्या बनेगा फिर? ऐसा शख्स तो हकीकत में मुसलमान है ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि इसको तो कहते हैं ईमान में शक, और शक से ईमान जायल हो जाता है, खत्म हो जाता है। शक से ईमान खत्म हो जाता है, वसवसों से खत्म नहीं होता। लेकिन जब उस वसवसे के ऊपर आप जम गए, लिटरली आपने इस बात को ऐसे ले लिया कि आई डोंट नो इफ माई रिलीजन इज राइट, ठीक है ना, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट रिलीजन एनी मोर, ठीक है ना? ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, ये तो एक यानी जिसको अकीदा कहते हैं, जहन की सोच है। अगर आपने उस जहन की सोच के बारे में सर्टेन डाउट हो गया आपको, तो गए, फिर उसके बाद आप रिलीजन के ऊपर हैं ही नहीं, तो वहां पर आपको इतमादी की जरूरत, खुद इतमादी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? लेकिन ये कि मैं हमेशा इसी के ऊपर रहूंगा, मेरा खात्मा भी ईमान के ऊपर होगा, नहीं भाई, उसके लिए तो आपको अमल करना पड़ेगा और अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी पड़ेगी, दुआएं मांगनी पड़ेगी, पड़ेंगी, और ईमान की हिफाजत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? उसमें फिर खुद एतमादी, वहां पर खुद एतमादी नहीं चलती, ठीक है? तो खुद एतमादी की जो है ना वो लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को हमें समझने की जरूरत है। हमने आज के दौर के अंदर जो है ना वो इसको एक बहुत ही यानी अजीब गरीब किस्म की, यानी हमने, चूंकि हम अपनी डेफिनेशन जो है वो गैरों के कल्चर से ले रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स के कल्चर से ले रहे हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से ना हमने जो नहीं होना चाहिए था उसको अच्छा बना लिया है, जो होना चाहिए था उसको जो है वो बुरा बना लिया है। ये कल्चर क्या कहता है, रिलीजन को जो है ना, दीन को जो है, ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज बना देता है, दीन को सब्जेक्टिव चीज बना देता है, और अपनी जात को जो है वो ऑब्जेक्टिव चीज बना देता है, जबकि बिल्कुल रिवर्स मामला था। दीन वॉज द ऑब्जेक्टिव थिंग, दीन के ऊपर आपको खुश खुद एतमादी होनी चाहिए थी, और जात के ऊपर एतमाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन काफिर कल्चर जो है, ठीक है, शैतान का जो कल्चर है बनाया हुआ बनी आदम की बर्बादी के लिए, वो बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल वैसी मामला है जैसे कि आप लोगों से 1-2 दिन पहले बात हो रही थी ना, कि आज के दौर के अंदर जिसको ज्यादा बोलना आता हो वो कामयाब है, और कामयाबी का दारोमदार ही जो है वो बोलने के ऊपर है, कितनी अच्छी स्पीच करी है, चाहे कुछ आता जाता नहीं भी है ना, उसकी स्पीच अच्छी होगी, उसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, और उसको जो है वो नौकरी भी मिल जाएगी, उसको जो है वो इनामात भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो बोलने के ऊपर बहुत एम्फेसिस, बोलना बोलना, अच्छा किसको बोलना नहीं आता, ओ उसको तो बोलना भी नहीं आता, इतना उसको बुरा बनाएंगे, इतना उसको निखट्टू बनाएंगे, इतना उसको बुद्धू की तरीके से ट्रीट करेंगे, अरे इसको तो बोलना भी नहीं आता, ठीक है ना? यही सोच है ना पूरे के पूरे मुआशरे के अंदर, हत्ता के दुनियादार तो दुनियादार, आप तो दीनदार भी इस बहाव के अंदर बहना शुरू हो गए, बोलना आना चाहिए, बोलना सिखा रहे हैं, बोलने के ऊपर जो है क्लासे हो रही हैं, बोलने के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि भी बोलना आ जाए, ठीक है ना? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जब सुन्नत को देखते हैं और सहाबा कराम की जब सुन्नत को देखते हैं, वहां पे क्या पता चलता है, और कुरान मजीद को, असल चीज तो कुरान मजीद है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वहां से क्या पता चलता है कि वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, जो भी तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, एक तुम्हारा रकीब अतीद है जो कि उसको पकड़ लेता है, अगर तुमने कुछ स्लिप ऑफ द टंग करी ना, डोंट थिंक इट विल बी इग्नोर्ड, इट विल बी ओवरलुक, नो, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, व्हाट एवर यू से विल कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अमेरिका के अंदर ना बचपन में जो जमाने जाहिलियत के अंदर जो टीवी ड्रामे वगैरह देखे थे, तो वहां पे यही होता था कि जब जो है ना वो पुलिस वाले आकर के जो है वो बैड गाय को पकड़ते थे ना, और खटखटियां लगाते थे, तो साथ साथ ये भी बकते जाते थे, है ना, एनीथिंग यू से और डू कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह काफ के अंदर एग्जैक्टली यही फरमाते हैं, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन समता खामोश रहा वो निजात पा गया, कम बोलो, चुप रहो, जरूरत के बगैर मत बोलो, ये हमारे दीन की तबलीग की तालीम है। बिल्कुल रिवर्स, 180 डिग्री रिवर्स है ये, इस कल्चरल नॉर्म्स और इस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है, और हम बिल्कुल इन चीजों से जो है ना वो यानी गाफिल है कि अच्छा इतना ज्यादा फर्क है,
इतना रिवर्स है बिल्कुल बिल्कुल कल्चर, हमारे दीन का कल्चर और इस दज्जाली निजाम का कल्चर। ठीक है, तो शुरू कहां से हुए थे? खुद एतमादी की बात हो रही थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उनको इस तरह से अपने ऊपर एतमाद नहीं था, तो उन्होंने जो है वो इसी वजह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे सिजन के अंदर आप वो ज्यादा मेरे लिए महबूब है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात ये इस पैराग्राफ के अंदर कि देखें, काम तो एक ही हो रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जेल खाने जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस काम के असबाब क्या बन रहे हैं, असबाब क्या बन रहे हैं। एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में दुआ आई, ये डिजायर आई यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में कि अल्लाह सिजन जो था है ना वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है उस चीज के मुकाबले में जिस तरफ मुझे ही औरतें बुला रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए दूसरा क्या सबब बनाया कि अजीज मिस्र और उसकी बीवी के दिल के अंदर भी ये बात डाल दी कि ये तो जो है ना, इनको तो नजरों से ओझल करना बड़ा जरूरी हो गया है, ठीक है, नजरों से ओझल करना जरूरी हो गया है, इनको जो है ना वो कैदखाने में डालो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका कपड़ा पकड़ करके खींचा नहीं था कि तुम मुझे कैदखाने में डालो, नहीं, अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी और वो इस बात को अहम समझना शुरू हो गया कि जब तक ये बाहर रहेगा ना तो बदनामी का चर्चा होता रहेगा, ठीक है ना। तो देखें, अल्लाह ताला काम एक करवाते हैं लेकिन उसके लिए कई चीजें सबब के तौर पे बना देते हैं। ये अल्लाह ताला के लिए बहुत सबसे आसान, यानी ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि असबाब बना दें किसी रिजल्ट को अचीव करने की खातिर, ठीक है ना। तो अब वो असबाब जो है वो सिर्फ इस तरह से नहीं होते कि जी जो है वो कोई जो है वो हथियार बन जाएगा या कोई जो है वो एटम बम बन जाएगा या कोई मिसाइल बन जाएगा, नहीं, जिसके पास मिसाइल पहले से मौजूद है उसके दिल के अंदर कोई ख्याल डाल दिया, बस खत्म बात, हो गया काम, है ना। क्या मसला है इसके अंदर, जिसके पास एटम बम मौजूद है, जिसके पास जो है मिसाइल मौजूद है, जिसके पास जो है वो दुनिया की सारी ताकतें मौजूद हैं, उसके दिल में कोई आइडिया डाल दिया, चाहे मुसलमान होने का आइडिया डाल दिया, चाहे मुसलमानों के दुश्मन होने का आइडिया डाल दिया, हो गया काम, जो अल्लाह ताला अचीव करना चाहते थे अचीव हो गया उससे, और जब नहीं करवाना चाहते तो उसके दिल को किसी और तरफ लगा दिया, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर डलवाने के लिए जो है वो एक उनके दिल के अंदर ख्याल पैदा कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, उन्होंने कुछ लिखा है, शुड वी अप्लाई टू सम डिग्री एट आवर होम्स ऑल्सो, आई फील आई स्पीक टू मच एट टाइम्स एट होम। हाँ, घर के अंदर जो है वो अगरचे के बीवी के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा बातचीत तो फिर नुकसानदेह होती है ना, तो वहां पर भी जो है ना वो इत्तेदाल, अच्छा बीवी, हर जगह का इत्तेदाल भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इत्तेदाल जो है ना ये एक कोई ऐसी एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि बस यानी इत्तेदाल की एक ही शक्ल है, नहीं, बोलने में इत्तेदाल सही है, बीवी के सामने एक अलग दर्जा है उस इत्तेदाल का, यानी बीवी के सामने बातचीत करें, अगर आपको बातचीत करनी आती तो बीवी के सामने बातचीत करें, लेकिन इतना बातचीत ना करें कि पता चला उसका दिल दुखाना शुरू कर दिया, उसको टीज करना शुरू कर दिया, या जो है ना वो ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो कि कल को आपको उसके ऊपर पछताना पड़े, ठीक है ना, कोई ऐसी चीजें रिवील कर दी उनके सामने जो कि यानी फिर आपको आपके गले पड़ जाएंगी, क्योंकि बेगम साहिबा तो नहीं छोड़ेंगी फिर उसके बाद आपको, ठीक है ना। तो बेगम साहिबा के यहाँ इतदाल जो है ना वो ये है कि बोले भी लेकिन इन चीजों का ख्याल रखें, उसी तरीके से बच्चों के सामने बोलना उसका एक अलग दर्जा होगा, अपने शेख के सामने जाकर के बोलना वहां पर आपको वहां पर इत्तेदाल अलग है, जब शेख साहब कह रहे हैं कुछ बोलने को तो उस वक्त बोलें, जब नहीं कह रहे बोलने को तो भाई ज्यादातर खामोश रहें, कोई अच्छा सवाल दिल में आ रहा है वो शेख साहब के सामने करें यानी बोलें, सवाल पूछें, अच्छा सवाल अगर आ रहा है, लेकिन फजूल में उल्टा सीधा कुछ लोगों की बकने की आदत होती है ना, वो एक ही बात रिपीट करते रहेंगे, 2 दिन पहले एक बात पूछी थी फिर वही बात पूछेंगे, उनको बस चुप रहना जो है ना उनके लिए मुसीबत होता है। ओ भाई, अब आप बेगम साहिबा के पास नहीं है, अब आप बच्चों के पास नहीं है, अब आप शेख साहब के सामने बैठे हुए या मशाए की महफिल में बैठे हुए, वहां वो वाला इत्तेदाल नहीं चलेगा जो बीवी के सामने वाला इत्तेदाल था, ठीक है। तो वक्त वक्त के हिसाब से और जगह जगह के हिसाब से اعتدال بھی مختلف ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ کوئی کتاب میں لکھا پڑھا تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ 30% اعتدال وہاں پہ چلے گا اور 20% یہاں پہ چلے گا اور 80% وہاں پہ چلے گا. یہ سب کچھ کوئی کتابی نالج تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اب آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو, باورچی آپ کو پتہ ہی ہوگا. ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی. مقدمہ زیر تحقیق تھا, اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں. یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبرگیری کرتے تھے. جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے, جس کو غمگین و پریشان پایا اس کو تسلی دیتے, صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے, خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے. جیل کا افسر بھی متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا, اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام نے اپنی شاکلہ کے مطابق کام کیا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, من یعمل علی شاکلتی والے جو آئے تھے نا, ہر بندہ اپنے شاکلہ کے حساب سے عمل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین تربیت کری تھی, یا اپنے والد صاحب کے طرف سے بھی ان کو یقیناً ابتدا میں تو تربیت ملی ہوگی نا. ہمارے نبی علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی تھی, ان کو تو والد دیکھنا نصیب نہیں ہو. ٹھیک ہے نا, ان کو تو والدہ بھی جو ہے وہ بہت ہی کم دیکھنی نصیب ہوئی. ان کی تربیت تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ بالکل نارم سے ہٹ کر کے کروائی, لیکن باقیوں کا تو ایسا معاملہ نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی رہے جو کہ اللہ کے نبی تھے, اور پھر جو ہے وہ دوسرے اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت بھی فرمائی. تو ان کے اخلاق جو تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر کے لوگوں کے دل جیت لیے. لیکن جو جیل خانے کا وہ تھا داروغہ, تو اس کے پاس اتنے اچھے اخلاق نہیں تھے کہ وہ آگے بڑھ کر کے ان کے لیے کچھ کر دیتا. تو اس نے منیمم درجہ آف اخلاق, منیمم درجہ آف اخلاق کیا ہوتا ہے کہ اپنے شر سے اگلے بندے کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے نا, تو اس نے کیا کہا کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا اتنا, اور باقی تو میں کچھ کر نہیں سکتا, آپ جیسا تو میں نہیں بن سکتا, لیکن کم از کم اپنے شر سے جو ہے نا میں آپ کو محفوظ رکھوں گا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا, کیونکہ اتنی اتھارٹی میری یہاں پر ہے. تو یہ منیمم لیول ہوتا ہے, اس کا تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ مکلف ہے کہ کم از کم اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کرے. تو یوسف علیہ السلام نے, اگرچہ کہ یہ مقصد تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ایک ایک ان کی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ایک صفات تھی نا یہ, یا سیکھی ہوئی صفات تھی ان کی اخلاق والی. تو ان اخلاق سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ بن گئی, ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات بن گئے, لوگ جو ہے وہ ان یہ لوگوں کی گڈ بکس میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, اب اس کے بعد اتنے زیادہ گڈ بکس میں آ گئے کہ آگے فائدہ عجیبہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار بھی کیا. ہے نا, ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے, ہم آپ سے بہت جو ہے نا وہ یعنی بہت متاثر ہیں, اتنا متاثر ہیں کہ بس. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو, کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے. بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت تھی, اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا. یہ واقعہ آگے آئے گا غالباً, جب وہ بنیامین کے اوپر وہ لوگ تہمت لگائیں گے نا, تو تمہارے بھائی نے بھی یہی کیا تھا بچپن کے اندر, چوری کری تھی, تو تم نے بھی جو ہے وہ آج پیالہ چوری کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا بس اتنا بھی ریفرنس ہے کہ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت تھی, پھوپھی جو ہے نا وہ لے جانا چاہتی تھی, تو کیسے لے کر کے جائیں, ابا تو اتنے محبت میں مبتلا تھے کہ پھوپھی صاحبہ کے حوالے کیسے کر دیں. تو پھوپھی نے جو ہے نا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی ایک بات کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے. یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی کسی کی چیز چوری کرتا تھا تو چور کو
उस बंदे के हवाले कर दिया जाता। जैसे नबी अलैहिस्सलाम शरीयत में है ना कि चोर का हाथ काटा जाएगा, तो उसमें ये था कि चोर को उसके हवाले कर दिया जाएगा गुलाम बना करके। तो फुप्पी ने जो है ना फिर कोई चीज जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ऐसी रखवा दी कि जिससे कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम साबित करवा दिया, और उसके नतीजे में याकूब अलैहिस्सलाम को हवाले करना पड़ा। वो कैसे बात आगे खत्म हुई इतनी तफसील मुझे अभी जहन में नहीं है। तो खैर फुप्पी को मुझसे मोहब्बत थी, उसके नतीजे में उस पर चोरी का इल्जाम लगा। फिर मेरे वालिद ने मुझसे मोहब्बत की, तो भाइयों के हाथों कुएं की कैद, फिर गुलामी और जलावतनी में मुब्तला हुआ। अजीज की बीवी ने मुझसे मोहब्बत की, तो इस जेल में पहुंचा। तो खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत ना करो। ये दो कैदी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में गए थे, एक रोज उन्होंने कहा कि आप हमें नेक साले बुजुर्ग मालूम होते हैं, इसलिए आपसे हम अपनी ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करना चाहते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे बाज़ दूसरे अइम्मा तफसीर ने फरमाया कि ये ख्वाब उन्होंने हकीकतन ना देखे थे, हकीकतन देखे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ख्वाब कुछ नहीं देखा था उन्होंने, महज यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और सच्चाई की आजमाइश के लिए ख्वाब बनाया था। ठीक है, जो कि एक अच्छा काम नहीं था। यानी किसी की नेकी को देख करके जब आप उसके मोतकद हो गए हैं, तो अब जो है ना वो बड़ों को और नेकों को जो है ना वो आजमाना नहीं चाहिए। ठीक है, खुसूसन छोटों के लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो बड़ों को आजमाए। हाँ, बड़े जो है वो छोटों को आजमा सकते हैं तरबियत की नीयत से, ठीक है, लेकिन छोटे बड़ों को नहीं आजमा सकते। तो इन्होंने जो है ना ये डेढ़ होशियारियां करने की कोशिश करी, तो गले पड़ गई फिर उनके। बहरहाल उनमें से एक यानी शाही साकी ने तो ये कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर से शराब निकाल रहा हूं, और दूसरे यानी बवर्ची ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियों का कोई टोकरा है, उसमें से जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं, और दरख्वास्त की कि हमें इन दोनों ख्वाबों की ताबीर बतला दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाबों की ताबीर दरियाफ्त की जाती है, मगर वो पैगंबराना अंदाज पर इस सवाल के जवाब से पहले तबलीग व दावत ईमान का काम शुरू फरमाते हैं, और उसूल दावत के मातहत हिकमत व दानिशमंदी से काम लेकर सबसे पहले उन लोगों के कुलूब में अपना एतमाद पैदा करने के लिए अपने इस मोजज़े का जिक्र किया कि तुम्हारे लिए जो खाना तुम्हारे घरों से या किसी दूसरी जगह से आता है, उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस किस्म का खाना और कैसा और कितना और किस वक्त आएगा, और वो ठीक उसी तरह निकलता है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ठीक है, कि ये कोई रमल जफर या जफर का फन या कहानत वगैरह का शोभदा नहीं, यानी कोई जादू टोना इस किस्म की चीजें नहीं है, बल्कि मेरा रब बजरिया वही मुझे बता देता है, मैं उसकी इत्तला दे देता हूँ। ठीक है, यानी अपनी नफी कर रहे हैं, मौजजा जरूर बता रहे हैं, लेकिन मौजजा की तारीफ ही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहता है तो वो किसी को अता करता है, खुद नबी जो है ना वो अपनी मर्जी से मौजजा नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो अपनी नफी और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस बात इवन यहां पर भी कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बात दिखा रहे हैं जो कि नॉर्मल से हट करके है, लेकिन फिर भी फरमा दिया ज़ालिका मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ठीक है, तो यही शान होती है अंबिया अलैहिस्सलाम की, और जो अंबिया के रास्ते पे के सुन्नत पे अमल करता है कि वो रब को कहीं से जो है ना वो आउट ऑफ द पिक्चर नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने फरमाया कि ये एक खुला मोजज़ा था जो दलील नबूवत और एतमाद का बहुत बड़ा सबब है। इसके बाद अव्वल कुफर की बुराई और मिल्लत कुफर से अपनी बेजारी बयान की, और फिर ये भी जतला दिया कि मैं खानदान नबूवत ही का एक फर्द और उन्हीं की मिल्लत हक का पाबंद हूँ। मेरे आबाओ अजदाद इब्राहिम और इसहाक व याकूब हैं। ये खानदानी शराफत भी आदतन इंसान का एतमाद पैदा करने का जरिया होती है। ठीक है, तो इससे ऐसे ही मालूम होता है कि उस जमाने के लोग जो है ना वो इब्राहिम व इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम से वाकिफ थे। ये कोई बहुत बड़ा यानी बहुत दूर का रीजन नहीं था, ये जो हजरात थे इब्राहिम इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, तो ये फलस्तीन के अंदर होते थे जब हिजरत करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आ गए थे, और मिस्र जो है वो फलस्तीन से ज्यादा दूर तो नहीं है, बस घोड़े की मुसाफत होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ से वहां चले जाते हैं। तो लोग जो है बज़ाहिर इनसे वाकिफ थे। पेज नंबर 69 शुरू किया है अभी हमने। इसके बाद बतलाया कि हमारे लिए किसी तरह जायज नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी खुदाई सिफात में शरीक समझें। ठीक है, यानी अपना एतमाद जो है ना वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो बन पड़ रहा है, जो अकल को लगने वाली दलाइल उनको समझ में आ रही हैं वो दलाइल दे रहे हैं।
ठीक है ना। अब अगर इनके बाप दादा परदादा से लोग वाकिफ ना होते, तो फिर अपने बाप दादा परदादा का जिक्र करना एतमाद बनाने की खातिर, तो दिस वुड बी सेंसलेस। ठीक है, तो ऐसे हिकमत वाले लोग जो हैं वो सेंसलेस बातें नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये बेसिकली एक दावत का उसूल हमारे सामने आ गया कि कोई अगर आपसे पहले से वाकिफ नहीं है, वैसे तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गई थी इन लोगों के साथ अच्छे अखलाक के जरिए से, लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो मोहब्बत वाला उनसर तो था, लेकिन मोहब्बत जरूरी नहीं है कि एतमाद की शक्ल में भी जाहिर हो। ठीक है ना, जैसे कि माँ को बच्चे से मोहब्बत तो होती है ना, लेकिन बच्चे की हर बात में माँ एतमाद तो नहीं करती। कब एतमाद करेगी? जब बच्चे की कोई ऑथेंटिसिटी भी उसके सामने आएगी, कोई रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो है ना वो इतनी समझ भी रखता है, इतना इल्म भी रखता है कि उसकी बात जो है ना वो मैं रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, और उसकी बात जो है वो फायदे वाली ही होगी और गलत फहमी की वजह से नहीं होगी। तो इसके लिए जो है ना फिर मोहब्बत के अलावा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंटीग्रिटी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो इंटीग्रिटी जो है वो खानदानी शराफत के जरिए से भी साबित होती है, और सच और सदा और अमानतदारी के जरिए से भी साबित होती है। ये सारी चीजें जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होती हैं दावत तबलीग के लिए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, दूसरे गुनाह कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मोमिन जो है ना ये झूठ जो है वो एक इंसान की ट्रस्टेबिलिटी को मुतासिर करता है। तो मोमिन का तो काम है भाई, मोमिन को दुनिया के अंदर जो है ना, यानी एक तो सालेह बनने के लिए भेजा गया है और दूसरा मुसलेह बनने के लिए भी भेजा गया है। ठीक है ना, दावत व तबलीग, ये तबलीगी जमात वाली दावत व तबलीग खाली नहीं होती दावत तबलीग, लेकिन दावत व तबलीग ये मोमिन के जिंदगी के मकासद में से है। इकरा बिस्म रब्बिक लजी खलक में इकरा की तफसीर के अंदर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बात लिखा है कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है ना वो दावत व तबलीग है। ठीक है, ये इकरा के लफ्ज से साबित होता है। तो जब झूठा होगा, जब काबिले एतमाद ही नहीं होगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दावत और तबलीग का काम कर सके सही तरीके से, बल्कि करेगा तो बेकार ही करेगा बिल्कुल। तो बहरहाल, तो इंसान का एतमाद पैदा करने का जरिया होती है दीन। है क्या ईमान? है क्या एतमाद? ही तो है। अल्लाह को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, आखिरत को नहीं देखा, किताबों को उतरते हुए नहीं देखा, तकदीर के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, लोहे महफूज को नहीं देखा, सब का सब क्या है? एतमाद। और एतमाद आपने खो दिया झूठ बोलने की वजह से, तो फिर अब क्या आपने दीन का काम करना है? फिर इसके बाद बताया कि हमारे लिए किसी तरह जायज नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी खुदाई सिफात में शरीक समझें। फिर फरमाया कि ये दीन हक की तौफीक हम पर और सब लोगों पर अल्लाह ताला ही का फजल है कि उसने सलामत फहम अता फरमा कर कबूल हक हमारे लिए आसान कर दिया। ठीक है, यानी सारा क्रेडिट जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही देते चले जा रहे हैं, मगर बहुत से लोग इस नेमत की कदर और शुक्र नहीं करते। फिर उन्हीं कैदियों से सवाल किया कि अच्छा तुम ही बतलाओ कि इंसान बहुत से परवरदिगारों का परस्तार हो ये बेहतर है, या कि सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बने जिस जिसका कहर व कुव्वत सब पर गालिब है। ये एक लंबी डिस्कशन चलेगी, और वो जो पीछे साहब जिसने कहा था ना कि मारूफ मसाइल में वो बात आएगी, तो उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो वो बस आने ही वाली थी, लेकिन क्लास का टाइम जो है वो क्योंकि ओवर हो चुका है, इस वजह से उसको फिर अगली क्लास पर ही रखते हैं इंशाल्लाह। रमजान मुबारक से पहले मेरे ख्याल में एक क्लास है, नहीं है आज जो है वो 4 तारीख हो गई। नहीं, अब तो रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। अभी हमने ये भी एक्चुअली फैसला करना है कि रमजान मुबारक में हमने सूरह यूसुफ चलानी है या सूरह बनी इसराइल चलानी है, जो खवातीन में चल रही है, हो सकता है सूरह। खैर, देखते हैं इंशाल्लाह। चले, यहाँ पर अगर किसी के पास कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो उसका हम इंतजार कर सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, वा आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।